सीट बैठने की जरूरत नहीं, टाइट तब बैठते हैं जब 500 लोग हों। ओम शांति। क्या सभी सेवाधारी प्रसन्न हैं? कमाई हो रही है? कमाई हो रही है? किसे कहते हैं कमाई? पैसे तो मिल नहीं रहे, फिर किसे कहते हैं कमाई? अविनाशी कमाई है। किस रूप में होती है ये कमाई? खुशी के रूप में और संतुष्टता के रूप में और इम्पोर्टेंट चीज और बताओ, शक्तियों के रूप में। आत्मा में शक्तियां भरती जाती हैं, तो समझ लो खाता जमा हो रहा है। हमारे संकल्प शुद्ध होते जा रहे हैं, खाता जमा हो रहा है। हमारी खुशी बढ़ रही है, हमारे संस्कार बदल रहे हैं, हम हल्के हो रहे हैं, हमारी चिंताएं जा रही हैं, खाता बढ़ रहा है। तो सभी कुछ विशेष लक्ष्य आते हैं ना बाबा के पास। देखो बाबा ने कहा कल मुरली में, लक्ष्य मजबूत, लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लक्ष्य ढीला होगा तो लक्षण भी ढीले आएंगे। तो यहाँ जब आए हैं तो अपना कुछ विशेष मजबूत लक्ष्य लेकर चलें। केवल ये सोच के खुश नहीं हो जाना हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है, बस इतना ही नहीं, इसके आगे तो कुछ भी नहीं होता। क्या है हमारा लक्ष्य? अब उत्तर दो, जिससे लक्षण आए, जिससे जीवन में दृढ़ता आए, कुछ करने का नशा चढ़े, क्या है वो लक्ष्य? हाँ बोलो बोलो, बाप समान बनना और बोलो, फरिश्ता बनना और, ठीक बोल रहे हैं। मैंने कह दिया लक्ष्मी नारायण बनना, इसका अर्थ वो लक्ष्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लक्ष्य नहीं है, वो भी हमारा लक्ष्य है, पर ऐसा लक्ष्य जिसको पाने के लिए हम लग जाएं। माताएं बताओ कौन सा लक्ष्य? देवता बनना, तो आप ही बन जाएंगे। अब आप कुछ करो या न करो, बाबा देवता बना देगा। ऐसा शरीर ही होना कर्माती, तो बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, हाँ पीछे वाले जरा आगे ही बढ़े, सीट बहुत खाली है, पीछे वाले आगे बढ़ो, हाँ उठो उठो उठो। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना आवश्यक है। अगर बड़े लक्ष्य को ही हम ध्यान रखते हैं तो देखा क्या जा रहा है। अब सोचो कर्म अतीत होना है, क्या लक्षण है उसके हमारे पास? कुछ भी नहीं। यह है कुछ भी नहीं, तब तो बहुत वैराग्य हो जाना चाहिए, हमें योग युक्त होने के पीछे लग जाना चाहिए, परंतु वैसा नहीं है। हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाए कैसे, कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे सदा खुश रहना है, कुछ भी हो इतने घंटे योग करना ही है। आज था ना स्लोगन, क्या था बोलो? कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं, सच्चे योगी हैं। तो एक लक्ष्य बना लें, कर्म में हमें ऐसे योग युक्त रहना है, एक विधि अपना लें उसकी, तो बहुत अच्छा होगा। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसमें भी ये लक्ष्य, कुछ भी हो जाए स्थिति नहीं बिगाड़नी है। महत्व हम किसे देंगे, बातों को या स्थिति को? अपने से बात करनी है कि बातें तो बहुत हैं दुनिया में, एक एक बात को हम महत्व दें या श्रेष्ठ स्थिति को महत्व दें? अपने संकल्पों को महत्व दें या छोटी छोटी बातों को महत्व दें? ये ठीक हो जाए, ये मुझसे ऐसा करे, इसने मुझसे ऐसा किया, ये बहुत छोटी बातें हैं, हमारी स्थिति, हमारी संकल्प शक्ति बहुत बड़ी चीज है। तो आज हम दो बातों पर विशेष चर्चा करेंगे। पहले एक बहुत सुंदर बात, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो मन और बुद्धि के मालिक हैं। बुद्धि का एक बहुत अच्छा प्रयोग मैं आपके सामने रखता हूं, कल से ही उसको शुरू कर दें। और बाबा ने जो हम सबको होमवर्क दिया है, कौन सा? बहुत होमवर्क दिए इस बार, हर घंटे में 5 मिनट कोई कर ले तो बेड़ा पार। और क्या होमवर्क दिया? मैं हर बार याद दिलाता हूं आपको, माताएं बताएंगे, माताओं का काम ज्यादा है। वो क्या? संस्कार बदलना, अपना होमवर्क संसार के लिए। अब तो बताओ, कम से कम 2 बार विश्व को सकास देनी है। कौन कौन देते हैं? क्यों, माताओं को क्या हुआ? सकास लेनी है, देनी नहीं है। मैंने अभी ज्ञान सरोवर में हाथ उठवाया तो 95% ने उठाया। अभी वहां क्लास करा के मैं आया, 95%, इसमें माताएं बहुत थी, 100 थी कम से कम, सबने हाथ उठाया। 2 टाइम सकास देना है। बोलो कौन कौन तैयार हैं? अब बताओ कौन कौन देंगे? इतना थोड़ा देंगे, इतना आधा देंगे, इतना पूरा देंगे, क्या विचार माताओं को? कितना उठाओ हाथ, अरे एक्सरसाइज हो जाएगी, इतने बूढ़े थोड़ा है कि हाथ न उठे। ठीक है, अब हम आपके सामने कुछ विधि भी रखेंगे। एक तो सवेरे के समय को हमें बहुत सुंदर व्यतीत करना है। मैं 1-2 चीजें आपके सामने रख देता हूँ, कल से आप उसका आनंद लें जीवन में। रोज सवेरे 1 बार हमें ऐसा अभ्यास और अनुभव करना है कि मानो हमारा बाबा से अच्छी तरह मिलन हुआ। मिलन देखो, नीचे भी आता है तो दूर होते हैं ना, ये बिल्कुल समीपता से मिलन हो। और उसकी सहज विधि अपनाएंगे कि हम सूक्ष्म लोक में पहुंचे। पहुंचना आता है? आता है? बस संकल्प करें ऊपर हैं, सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फरिश्ता बन के जाए, पहले परम धाम में जाए या सुख संवतन में, पहले क्या करें पीछे क्या करें, ये सब नहीं, कुछ भी करो। कई लोग इसी उलझन में रहते हैं कि पहले सुख संवतन में जाए फिर परम धाम में, या पहले ऊपर फिर नीचे, क्या करें? कुछ भी करो, करो। तो जैसे मैं आपको कहूं कि हम सब यहाँ बैठे हैं, संकल्प से बाबा के कमरे में जाकर बैठो, बैठ सकते हैं ना? तो सूक्ष्म गति क्या है कि जैसे हमने संकल्प किया मैं बाबा के कमरे में हूँ, तो हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ हमारा स्वरूप निर्माण कर देता है। तो जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर निर्माण हो जाता है। ऐसे ही बस हमें 1 सेकंड में संकल्प करना है, मैं सूक्ष्म लोक में हूँ, आकाश के ऊपर हूँ, सफेद प्रकाश है, चित्र बन सकता है ना? तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा हमने देखा नहीं है। रोज रोज अभ्यास करने से ऐसा लगेगा कि वो तो बहुत देखा हुआ है, अपना घर है, घर हैं, तीनों अपने घर हैं। इसलिए बाबा हमें मास्टर त्रिलोकीनाथ कहते हैं, ऊपर भी हमारा घर, बीच में भी हमारा ही है, यहाँ भी हम हैं। तो बाप दादा सामने खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में क्या देखेंगे? ज्ञान सूर्य शिव बाबा, शब्द दे ले एक, ज्ञान सूर्य शिव बाबा। और फिर अनुभव करेंगे बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और बाबा ने अपनी 1000 भुजाओं की छत्र छाया ऐसे सिर के ऊपर लगा दी है। आनंद लेंगे इसका कुछ देर, ऐसा फील होगा मिलन हो रहा है। फिर बाबा ने अपना हाथ सिर पर रखकर वरदान दिए। इसको बाबा कहते आते थे स्मृति का तिलक लो बाबा से रोज सवेरे। बाबा ने हाथ सिर पर रख दिया, तिलक लगाया, बच्चे क्या भाव? विजयी भाव, विघन विनाशक भाव, निर्विघन भाव, सफलता मूर्त भाव, वरदान याद आएंगे नए नए। ऐसे पहले बाबा से मिलन करेंगे उठते ही। इसमें ध्यान ये रखना है, ये इंतजार नहीं करनी कि नहा धो लें, फ्रेश हो लें, फिर हॉल में जाके बैठेंगे तब करेंगे, उठते ही करना ये काम। नहीं तो क्या होगा, इस बीच में बहुत सारे संकल्प आ जाएंगे, वो व्यर्थ हों या कामकाज के हों, साधारण हों, हमें उन संकल्पों को नहीं आने देना है। बहुत अच्छी तरह समझ लें, जब हमारी आंख खुलती है, हमारे पहले 10 मिनट जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। रोज रोज हमारे पास 10 मिनट स्वर्ण काल है। समझ रही माताएं सभी पीछे वाले? स्वर्ण काल, उसमें जितने सुंदर संकल्प हम करें बस वही हमारा जीवन होगा। तो उठते ही ऐसा बाबा से मिलन करें, फिर कुछ अच्छे संकल्प करेंगे। मैं हमेशा सिखाता आ रहा हूँ, माताएं चली गई होंगी, नहीं आई होंगी, क्या संकल्प करेंगे? पहला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। है या नहीं? क्यों है? अपने भाग्य को याद करना है। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। खुले दिल से संकल्प करेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं गरीब हूँ ये नहीं, मैं बहुत धनवान हूँ। कभी भूल से भी नहीं कहना, जिन माताओं को संकल्प रहता हो हम तो गरीब हैं, वो ये संकल्प निकाल दें। अगर बार बार सोचेंगे हम गरीब हैं तो क्या होगा, गरीबी बढ़ती जाएगी। गरीब नहीं है, बहुत साहूकार हैं हम सब। हैं या नहीं? जो गरीब माताएं बैठी हाथ उठाना जरा। एक ने उठा, दो, तीन, तीन माताएं गरीब बैठी हैं पीछे भाई, इसलिए पीछे बैठे हैं कि गरीब हैं। आगे आ जाओ जरा, मैं आपकी गरीबी दूर कर दूं अभी। आओ, गरीब नहीं है, भगवान के बच्चे। और गरीब, भगवान को भी लज्जा आएगी अगर देख लिया आपका हाथ, आएगी या नहीं? हम संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं। धनवानों के पास जो कुछ नहीं है, सुनिए आज की सवेरे की मुरली, याद है ना, धनवानों के पास कुछ नहीं होता, केवल धनी तो है, सुख शांति खुशी आनंद प्रेम ये सब नहीं है, खजाने ये हैं। आत्मा के सारे गुण और शक्तियाँ हमारे खजाने हैं, जो स्थूल खजानों को आकर्षित करते हैं। याद रखेंगे आप सभी, सूक्ष्म खजाने स्थूल खजानों को आकर्षित करते, अब भी करेंगे और भविष्य में तो अथाह हो जाएगा। तो सवेरे उठते संकल्प करेंगे। अब एक बहुत सुंदर संकल्प मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस बार बाबा ने कई बार कहा, बाप बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? स्वराज्य अधिकारी। तो ये फीलिंग बढ़ानी है, सवेरे उठते ही संकल्प दे दो, मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ। शब्द है ना बाबा के, राजा हो, राजा बेटे हो, मैं राजा हूँ कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि के, संस्कारों के, शरीर के। तो एक बहुत अच्छा काम करना है आज से ही, आपको आज से ही कर लें, क्लास के बाद योग होगा, सवेरे से कर लें। मन और बुद्धि जैसे दो बच्चे हैं हमारे। मन क्या है? संकल्प शक्ति। और बुद्धि? नहीं, मैं कुछ और बताऊंगा। बुद्धि क्या है? नहीं, कुछ और। बुद्धि क्या है? बुद्धि है ग्रहण शक्ति। निर्णय करना तो उसका एक काम है, एक काम केवल। बुद्धि है विवेक शक्ति, बुद्धि है धारणा शक्ति, बुद्धि है तीसरा नेत्र। निर्णय करना तो उसका एक काम है केवल। हम ये सोच लेते हैं बुद्धि क्या पढ़ाया है, बुद्धि निर्णय शक्ति है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो अपने इन दोनों बच्चों से बात करेंगे, हे मेरे मन अब चंचलता छोड़ दे, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, शांत हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, भटको नहीं, जन्म जन्म तुम बहुत भटके हो, अब शांत हो जाओ। जैसे कोई आपका बच्चा बिगड़ गया, उसे बैठ के प्यार से क्या समझाएंगे, समझाते हैं ना? इसे मन जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसको प्यार से समझाओ, साध लो इसे, रोक दो, आ जाओ इधर ही, भटको नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में, जहाँ भी जाओगे फिर वापिस आना पड़ेगा, इसलिए यही रहो मेरे पास। अब बाबा के संकल्पों में, बाबा की याद में मगन हो जाओ, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। बहुत बातें की जा सकती हैं, ठीक है। दूसरा बुद्धि, अब ये प्रयोग बहुत अच्छा सभी करेंगे। कल सवेरे जब मुरली सुने तो पहले योग जरूर करना है सबको, थोड़ा सा थोड़ा सा, ज्यादा तो मैं इसलिए नहीं कहता कि आप जाएंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा करना है, 10 मिनट अवश्य। अपनी बुद्धि से बात करो, हे मेरी बुद्धि आज तुम जो भी मुरली सुनो उसे साथ साथ धारण कर लेना, तुम मेरी दिव्य बुद्धि हो, रिफाइन रहना, स्वच्छ, किसी भी गंदगी को अपने में प्रवेश न करने देना, द्वार बंद कर लेना, तुम्हें स्वच्छ होना है, दिव्य बनना है, तुम मेरी सच्ची साथी हो, मित्र हो, ठीक है। आपको कहीं भाषण करना है, मान लो अपनी बुद्धि से बात कर लो कि जो कुछ विवेक शक्ति तुमने अपने में भरी है, आज जब मैं भाषण करूं सब इमर्ज कर देना, सब याद आ जाए मुझे। स्टूडेंट्स को भी आप सिखा सकते हैं, स्टूडेंट हैं दोनों, जब क्लास में जाओ तो अपनी बुद्धि से बात करना, जो भी टीचर पढ़ाए आज सब याद कर लेना, देखो इसके पर अनुभव देखना, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। तो सवेरे उठते ही वही 10 मिनट में, एक साथ तो नहीं कर सकेंगे ना, नंबर वार अपने मन और बुद्धि से ऐसे बातें भी कर लेना। बुद्धि को बहुत दिव्य हमें बनाना है, रिफाइन, स्वच्छ, बुद्धि की स्वच्छता सबसे बड़ी चीज है। हमारी साधनाओं में बुद्धि की स्वच्छता बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने कभी कहा था, तब हम इसका अर्थ ही नहीं समझते थे, बहुत पहले की बात है, कि जैसे जादूगर लोग हाथ की सफाई से कमाल दिखाते रहते हैं ना, तुम्हारी भी बुद्धि की सफाई जब हो जाएगी तो तुम कमाल करोगे। तब हमें पता नहीं था बुद्धि की सफाई क्या होती है, कब से कब, 35 साल पहले की बात है ये, बुद्धि की सफाई। अब हम जानते हैं कि बुद्धि में हमें किसी के लिए भी घृणा, ईर्ष्या द्वेष, बदले की भावना, कुछ बुरे विचार रखने ही नहीं है। हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है। माताएं अपने घर में सब बर्तनों को स्वच्छ रखती है ना, या झूठे ही रखती है 5-7 दिन, रात के रात को ही मांज देते हैं। हमारे जब लौकिक की तरफ ये प्रसिद्ध था, लेकिन लोगों ने देखो भक्ति से जोड़ दिया हर चीज को, कि रात को ना बर्तन गंगा स्नान करने जाते हैं, इसलिए मांज के रखना ताकि घर में गंदगी न रहे। तो जो आचार्य थे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि लोग सफाई रखें। तो हमारे पास जो बर्तन है, कौन सा, बुद्धि का बर्तन, इसको भी हम साफ रखेंगे तो इसमें अच्छा अच्छा माल भर सकेगा ना। दूध वाला दूध देने आए तो हम किसी भी बर्तन में तो नहीं डलवा लेते ना, दूध के लिए विशेष रूप से सबसे स्वच्छ बर्तन रखते हैं। और ज्ञानमृत, धारणाएं, शक्तियां, ये तो संपूर्ण स्वच्छ बुद्धि में ही धारण होंगी, बाकी में होंगी नहीं, साथ साथ बाहर आ जाएंगी। दूध ऐसे वैसे बर्तन में डालने फट जाएगा, शक्तियां भी बिखर जाएंगी अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी। तो हम ऐसे रोज सवेरे अपने को चार्ज करेंगे। समझती है माताएं चार्ज करना? मोबाइल चार्ज करते हैं ना, जिन जिनके पास मोबाइल होगा माताएं भी रखती हैं थैली में अंदर, बचता रहता है तो पहले निकालेंगी, वो भी पर्स में होगा, फिर पर्स खोलेंगी, इतने घंटी पूरी हो जाती है। बहुत संभाल के रखती है माताएं अपने मोबाइल को। दूसरी बात, हम सब अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। आज मुरली में था, आज या कल, ड्रामा बना बनाया है। ऐसा नहीं कह सकते कि अब शूट कर रहे हैं, अनादि बना बनाया है। लेकिन अब हम एक काम तो कर रहे हैं, भाग्य निर्माण, आत्मा को पावन बनाकर श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण तो हम कर रहे हैं ना। वो भी हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, बना बनाया आप ही हो जाएगा, आप ही कुछ नहीं होता। फिल्म बनी बनाई भी हो तो भी एक्टर्स को एक्ट तो करना ही पड़ता है। या डायरेक्टर ने फिल्म लिख दी और हो गई, एक्टर को एक्ट करना ही पड़ेगा। बार बार जब दिखाएंगे तो भी हमें लगेगा ना एक्टर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाग्य बनाने का काम अब हम सब कर रहे हैं। तीन तरीकों से हमारे भाग्य बनते हैं। बाबा ने ये बात मुरलियों में 3 साल पहले कई बार कही थी। पहला भाग्य बनाने का तरीका है श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा। दूसरा भाग्य बनाने का तरीका है संतुष्टता के द्वारा। संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करेंगे और उनकी दुआएं लेंगे। और तीसरा तरीका है सेवा के द्वारा। सेवा कैसे? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, उनको यदि हम अपने अंदर धारण कर लें तो सेवाएं हमारे लिए अति अति कल्याणकारी हो जाएं। बेहद की वृत्ति द्वारा, निष्काम और निस्वार्थ भावना द्वारा, सच्चे दिल से की गई सेवा संपूर्ण पुण्य देती है। अगर हद है भाई, ये मेरा डिपार्टमेंट, ये तेरा, मेरी तो यही ड्यूटी, तेरे में नहीं जाऊंगा। हम यहाँ जो सेवा में रहते हैं कर लेते हैं ना कोई कोई ऐसा, नहीं मेरी तो यही ड्यूटी, यहाँ मेरी नहीं, मैं क्यों यहाँ करूं। ये हद की दीवारें हो गई। ठीक है ड्यूटी तो है, पर हम बेहद में रहेंगे, सब हमारा है ना। दूसरा निष्काम भाव सेवा। सेवा शब्द ही इतना सुंदर है कि सेवा करने के बाद कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। सेवा, अगर सेवा भाव नहीं है तो कुछ सेवा करने के बाद लेने की इच्छा होती है, जो सेवा की दिव्यता को, उसकी सुंदरता को समाप्त कर देती है। अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य। पुरुषार्थ हम जो सब करते हैं, ज्ञान योग का, मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, धारणाएं करते हैं, ये सब हमारा स्व पुरुषार्थ है। दूसरी बात बहुत अच्छी थी संतुष्टता के द्वारा। क्या मिलती है संतुष्टता से? दुआएं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुआएं हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज हैं। हैं या नहीं? किसी आत्मा के साथ यदि सबकी दुआएं हों तो उसका योग भी सहज लगता है, उसकी बीमारियां भी सहज जाती हैं, उसके जीवन के विघ्न भी सहज नष्ट हो जाते हैं। और किसी के पास दुआएं न हो तो कांटा लगने के बाद भी घाव हो जाएगा बड़ा, ठीक है बात। और हमारे साथ एक और बड़ी बात है, हमें केवल मनुष्य आत्माओं की ही दुआएं नहीं मिलती बल्कि बोलो है नहीं और बाबा की दुआएं। हमारे साथ परमात्म दुआएं भी बहुत हैं। कैसे मिलेंगी परमात्म दुआएं? उसकी आज्ञाओं पर चलने से। ये बहुत सुंदर विषय है सोचने का, भगवान किन से राजी हो जाता है। हम उसकी सेवाएं सफल कर रहे हों, हम उसके यज्ञ को सफल कर रहे हों, उसने यज्ञ रचा है, हम उसमें कुछ भी वेस्ट न हो इसका ध्यान रख रहे हों, हम ध्यान रख रहे हों कि जो भी यज्ञ में बाबा के बच्चे आते हैं वो यहाँ से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जाएं, तो यज्ञ रचने वाला खुश होगा ना, ठीक बात है। और हम अलबेले हों, बाबा के बच्चे आ रहे हों, हम केयर ही न करते हो, तो यज्ञ को रचने वाला खुश नहीं होगा। ये मोटी सी बात, भगवान को राजी करने का एक बहुत सुंदर तरीका ये भी है कि हम सच्चे दिल से यज्ञ की सेवा करें। सभी सेवा में आते हैं ना, आप सब तो करते ही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इससे पुण्य भी बहुत जमा होता है। इस बार आखिर में अब बाबा आए थे ना 13 को, कौन कौन थे तब माताओं में, 13 अप्रैल, थोड़े ही थे, भाइयों में कौन कौन थे, तो बाबा ने मधुवन वालों की से बात करते हुए ये बात विशेष कही थी, यज्ञ सेवा भी बहुत बड़ा पुण्य है। चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, देखो हमारा आंगन साफ सुथरा हो तो आने वालों पर प्रभाव पड़ेगा ना, रोज हजारों लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, जब वो सफाई देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य लगता है ना, हमारे घर में भी इतनी सफाई नहीं है, एक प्रभाव पड़ता है। सफाई करने वाला शायद सोचता हो मेरी बहुत छोटी सी सेवा है, पर छोटी सी नहीं है, तो सेवा बहुत बड़ा पुण्य है। सभी अपने घरों में भी माताएं ध्यान दे, दुआएं लेनी है संतुष्ट करके। संतुष्ट करना दूसरों को सहज है या नहीं, बताओ माताएं, ऐसे ही नहीं बोल देना जैसे बाबा के सामने बोलते हैं ना, सब हाथ उठा देते हैं, चाहे कुछ आता हो या ना, पड़ोसी ने पूछा तुमने हाथ क्यों उठाया, कि सब उठा रहे थे मैंने भी उठा दिया, ऐसे नहीं, सच सच बताओ संतुष्ट करना सहज है या थोड़ा कठिन। जो समझते सहज है वो हाथ उठाओ, अब हाथ नहीं उठेंगे। माताएं अपने घर में सबको संतुष्ट कर सकती हैं, सब बच्चों को, बच्चे खा पी के भी गाली देते हैं, है या नहीं आजकल ऐसा, देखो 10 साल में ही जैसे युग बदल गया है, युवकों की बुजुर्गों की, बाप और बच्चे, माँ बाप और बच्चों के बीच के संबंधों की, प्यार की, सारी बात बिगड़ गई है। अभी मैं आ रहा तो मुझे एक ने फोन किया दिल्ली से कि एक भाई तुम्हारी भट्टी में आया था, मैं अभी दिल्ली में था, तो कहा वो पुलिस इंस्पेक्टर रहा है और एक मास से ही ज्ञान में आया है, तो बहनों ने भेज दिया था कि जाओ भट्टी कराओ, रानीबाग एक सेंटर है उसमें, अभी एक हफ्ता पहले ही भट्टी में थे, 5 दिन पहले। तो मैंने कहा क्या बात है, कि वो व्यक्ति बहुत दुखी है, उसका बेटा और बहू उसके नाक में दम किए हुए हैं, वो मरने की सोच लिया था, तो एक बार ज्ञान देखने के लिए बाबा के पास आ गया, तो चल गया। फिर मैं सोचने लगा देखो पुलिस इंस्पेक्टर और बेटे बहू से तंग, तो उसने भी जरूर तंग किया होगा ना, इंस्पेक्टर रहते हुए बहुतों को किया होगा, जरूर तंग किया होगा, पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही गड़बड़ करते हैं ना, इतना अच्छा जीवन पुलिस वालों का नहीं रहता, खाते पीते बहुत हैं और जरा व्यवहार भी रफ रखते हैं, तो दूसरों की दुआएं नहीं मिलती। तो कहा मरने जा रहा था, वो कहता है मैं समर्पित हो जाऊं अब, तो मैंने उसे कहा भाई अभी तो एक ही मास हुआ है, पहले 1 साल ज्ञान पूरा करो फिर सेवा में भेजना उसको, फिर 2-4 साल के बाद, और बुजुर्ग तो समर्पित वैसे भी होते नहीं हैं। तो देखो स्थिति, संबंधों के टकराव, माँ बाप कितने भारी होते हैं जब वो ये देखते हैं कि जिन बच्चों के लिए हमने अपना जीवन लगा दिया वो भोजन नहीं देते हमें, कहते हैं कहीं भी जाओ जबकि ये ऐसा है जिसको पेंशन मिलती है बहुत अच्छी, कहता तुम कहीं भी जाओ अपना पैसा वैसा लेके चले जाओ घर से बाहर। तो संतुष्ट करना अब कलयुग के अंत में एक कठिन प्रश्न रह गया है, लेकिन फिर भी हमें लक्ष्य जरूर रखना है कि हम एक दूसरे को संतुष्ट करें। माताएं यहाँ रहती है एक एक कमरे में, बहुत बहुत माताएं रहती है ना, एक दूसरे का ध्यान रखना, हमारे किसी भी व्यवहार से दूसरों को परेशानी ना हो रही हो, ठीक है ना। ऐसे ना हो हम रात को बात करते हो और फिर किसी को नींद ही ना आती हो। ध्यान रखेंगे सभी माताएं भी, एक दूसरे का ध्यान रखना ये राजाई संस्कार है। राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा ना, सच्चे राजा माता पिता होते हैं जो प्रजा के लिए मरते हैं, आजकल जैसे नहीं, जिनका प्रजा को जिनका जनता को कुछ पता ही नहीं कि जनता को भी कुछ चाहिए क्या, हमें चाहिए। आजकल के नेता राजा हैं लेता, और असली राजा हम सब जब थे तो क्या थे, देने वाले दाता। आपने सुनी हो, जिन्होंने इतिहास पढ़ा हो, हर्षवर्धन सम्राट हुए उज्जैन के, उस टाइम उज्जैन बहुत बड़ा राज्य होता था, उसका जो राजा होता था वो सम्राट, उसको पदवी होती थी बहुत बड़ा, दिल्ली राज तब नहीं था। उसका एक नियम था, देखो ऐसे भी राजा, और वो राजा जरूर हम में से ही कहीं हैं यहीं, हर 5 साल में वो अपनी सारी धन संपत्ति पूरा खजाना दान कर देता था, अपने कपड़े तक, हाथों में जो पहने गले में जो पहने, राजा तो बहुत पहनते थे ना, सब दान कर देता था। सोचो आज कोई है ऐसा, ये 13वीं सदी की बात है, 14वीं सदी की, अब से 700 साल पहले की कलयुग की बात है। कलयुग में इतने अच्छे अच्छे सम्राट हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम सभी क्या करेंगे। नहीं 13वीं सदी की बात नहीं, 1300 साल पहले की बात है, द्वापर का एंड था, 700 कुछ में हुए हैं ये सम्राट 8वीं सदी में। तो देखो हम सभी एक दूसरे को संतुष्ट करें। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ आपका, आपको सच्चा अनुभव है, ये नजदीक का अनुभव है। हमारे यहाँ एक जगह है, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन और कहाँ, एक माता भोजन खिलाती थी, सभी भोजन लेने आते थे, लेकिन इसका व्यवहार इतना रफ था, अति अति, सब उसको बद्दुआएं देते थे, ये बुढ़िया कब मरे, नाश्ते में थेपले 2 दे दिए, अगर कोई तीसरा लेने आ गया तो वो देती नहीं थी। बोलो, उसके अपने थेपले थे, मधुबन से गए थे थेपले। तो सोचने की बात है, जो भगवान के घर के माल से भी दूसरों को संतुष्ट न कर पाए, अगर उन्हें खुद खिलाना पड़े अपने घर से, तो फिक्स कर देगी सबको आधी रोटी खानी है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, सब्जी एक एक चम्मच मिलेगी, ज्यादा नहीं। सोचो, सभी सोचें, क्या हाल हुआ उसका, पागल हो गई, व्हीलचेयर पर आ गई, और 2-3 साल ऐसे दुर्गति में बीते, सब बहुत खुश होते थे उसे देखे कि अब मजा आया, ठीक अब ठीक, अब प्रभु जी ने कुछ न्याय किया, मतलब सभी उससे दुखी हो गए थे, इतने दुखी कि दिन में कई लोग तो 3 बजे खाना खाने जाते थे जब वो चली जाती थी, नाश्ता छोड़ दिया था, जूस वूस पी के रह जाते थे, क्या होगा इससे भला। जो मनुष्य भगवान के खजाने से भी दूसरों को, जबकि उसको देने की ड्यूटी है, दो तुम और ले जाओ, कोई कमी नहीं है, तो भी नहीं दे पा रहे, ऐसा संस्कार दास दासियों का ही होगा ना, राजाओं का नहीं, राजा माना दाता। हम संतुष्ट करना सीखें एक दूसरे को, हमारा कुछ नहीं जाएगा, दूसरे को देने से, बोलो माताएं बोलो, हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं, और दूसरों का छीनने से मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। ये भारत से अभी पिछले 30-40 सालों में ये सिद्धांत खत्म हो गए, क्योंकि विदेशों के सिद्धांत सारे आ गए। लेकिन हमारे भारत की ये महान सभ्यता थी, हर ग्रस्त एक भूखे को भोजन खिलाकर ही भोजन खाते थे। जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन्हें पता होगा, उनके घरों में ये सब चलता था। और अब क्या होगा, भूखे भूखे ही रहे, पहले हम पेट भरे, अब तो ये स्थिति आ गई ना। तो ये कलयुग के अंत के संपूर्ण रूप से लक्षण हमारे सामने है। हम एक दूसरे को संतुष्ट करें। यहाँ पर सबसे अच्छा संतुष्ट करने का तरीका एक और है, हमारे बोल। अच्छे बोल बोलकर हम दूसरों की दुआएं ले सकते हैं। कम से कम बोल बोलने में तो हमारा कुछ खर्च नहीं होता। मान लो कभी ऐसा भी है कि वस्तु हम दूसरे को नहीं दे सकते, तो भला अच्छे बोल तो दे सकते हैं ना। मुझे ये बात एक याद आ रही है, एक भाई के जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन इस एक चीज से हुआ था। ये तो सच घटना है, मेरे साथ घटित घटना है, मुझे इसको सुनाने में कुछ छुपाने की बात नहीं। एक भाई, बहुत पहले की बात है, हमारे यहाँ बिजली छोटा सा डिपार्टमेंट बना ही था, तो एक व्यक्ति बल्ब लेने आया कि भाई मेरा बल्ब फ्यूज हो गया है। हम सब स्नान कर रहे थे ऊपर, तो उसने उसको डांटा, तुम घड़ी घड़ी बल्ब फ्यूज कर देते हो, नहीं मिलेगा, जाओ। अब वो बेचारा मुंह छोटा करके चल दिया। अब बल्ब वो तो फ्यूज नहीं करता था, कोई लकड़ी मारते उसको, बल्ब तो आप ही फ्यूज होते हैं। उससे मेरी फ्रेंडशिप थी, मैंने बाद में उसको कहा नाम लेकर के, भाई अगर तुम भगवान के माल से भी दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सके, तो जब तुम्हें अपने घर से देना पड़ेगा तो क्या हाल होगा। यहां से उसके जीवन में एक विशाल परिवर्तन हुआ। ये दूसरी घटना थी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसको संकल्प हुआ कि सचमुच बाबा ने जो हमें दिया है वो दूसरों को सुख देने के लिए ही तो है, नहीं तो बाबा हमें भोजन खिलाए, सेवा कराए, खत्म। लेकिन वो देता है ना बहुत कुछ, उसने डिपार्टमेंट बना दिए हैं, एक दूसरे को सुख दो। देखो ये बात गीता में भी है, शुरू में ही है, प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्सो, तुम इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो, तुम इस यज्ञ की वृद्धि करो, तो देवता प्रसन्न होकर तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। तो देखो बाबा ने ये यज्ञ रचकर हम सबको कहा, देवकुल की जो आत्माएं यहाँ आ रही हैं, देवता आ रहे हैं ना, तुम उन्हें प्रसन्न करो, संतुष्ट करो, तो वो सब कुछ देंगे ना। यज्ञ में कहाँ से दे रहे हैं सब लोग, वही दे रहे हैं ना जो देवकुल के हैं, तो यज्ञ वृद्धि को पाएगा, वो तुम्हें मन इच्छित फल देंगे ना, इससे हमारी सब आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। तो हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बदलें, अपने को उदार चित्त करें। हमें एक दूसरे को संतुष्ट करना है, हमें रिटर्न में मिलेंगी दुआएं। देखो माल भगवान का, आप सबके घरों में जो है वो भी किसका है या नहीं, मेरे कहने से या सचमुच, बताओ माताएं, कहेंगे दिल से हमारा सब कुछ बाबा का है। और अगर आज बाबा कहते दे दो मुझे, बोलो माताएं क्या उत्तर देंगी, कहेंगी बच्चों की शादी करनी, बाबा कहाँ से दे दें, अभी तो बीमारी पे बहुत खर्च हो रहा है, आपको सारा कैसे दे देंगे, बाबा लेगा नहीं, आप चिंता न करो, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो हमारा सब कुछ बाबा का है ना, आप घर में भी संकल्प रख लो, जो कुछ घर में है वो एक दूसरे को सुख देने के लिए है। ये नहीं बादाम आ गए तो अलमारी में बंद जब तक उनको कीड़े न खा जाएं। कुछ माताओं की आदत होती है, देख लो सभी माताएं अपने को, फ्रूट आ गए बंद करके रख दिए जब तक वो खराब न होने लगे, जब खराब होंगे तो कहेंगे भाई जल्दी खत्म करो इन्हें, अब ये खराब होने लगे हैं। देख लो अपनी अपनी आदत, भाई हंस रहे हैं कि हमारी माँ भी ऐसे ही करती है, ठीक है। तो इससे बढ़ोतरी नहीं होगी, इससे कमी पड़ जाएगी। सुख देने से हमेशा ही बढ़ता जाता है, यही सृष्टि का नियम है। धन भी जितना सेवाओं में लगाते हैं बढ़ता है घटता है, माताओं का अनुभव है, यही बढ़ जाता है। और जो सेवाओं में नहीं लगाते उनको कमी पड़ती रहती है यही। तो हम इन तीन तरीकों से अपने खजाने बढ़ाते चलें और कल सवेरे उठकर वो सब काम करना जो मैंने आप सबको बताया, बुद्धि से बात करना है। माताएं ये न सोचें हमको याद नहीं रहता, अपनी बुद्धि से बात करना, हे मेरी बुद्धि आज जो मुरली सुनो उसे 5 पॉइंट जरूर याद कर लेना, और बाद में आके देखना याद रहती है 5। धीरे धीरे 5 पॉइंट याद रहने लगेंगी। सब माताएं ऐसी प्रैक्टिस करें। तो अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ करना है। देखो धूल उड़ती हो, हमारे यहाँ राजस्थान में धूल उड़ती रहती है बहुत, घरों में आंधी तूफान चले, बाहर गलियों की सफाई हो रही हो, तो माताएं क्या करती हैं? खिड़कियां बंद करेंगे या नहीं, या सोचेंगे आ जाने दो थोड़ा सा। हम भी अपनी बुद्धि की खिड़कियां बंद कर लें, किसके लिए? कोई भी गंदगी के लिए। ये तो हमारी एक नेचुरल नेचर है ना, हमारी आदत है कि हम कोई भी गंदगी अपने घर में आने नहीं देते। तो हम अपने मन मंदिर में भी, अपनी बुद्धि के स्वच्छ घर में भी कुछ गंदगी ना आने दें। अगर हम भरते रहते हैं तो वो गंदगी हमें ही नुकसान करती है, हमारी एकाग्रता नहीं होती, हमारा योग नहीं लगता है। चलो अब सभी ऐसे ही अभ्यास में बैठेंगे, बाबा की 1000 भुजाएं सिर के ऊपर।
हर